ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। लगभग 60.42% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी जिले में और सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हुआ। जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी मनीष सिसोदिया और भाजपा के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश भितूड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव में प्रमुख चेहरे हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच तमिलनाडु की इरोड ईस्ट और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। इरोड ईस्ट में करीब 67.97% और मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ। इन दोनों सीटों और दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतगणना शनिवार को होगी। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। इस 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने बताया कि श्री ऑल्टमैन ने प्रौद्योगिकी को जनवादी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है। श्री ऑल्टमैन ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बताया। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद डार ने कठुआ के हीरानगर से वाटरशेड यात्रा को रवाना किया। ये 2400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हीरानगर में आयोजित कार्यक्रम में वाटरशेड यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए और शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने के लिए यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। अगले महीने की 1 तारीख तक चलने वाला ये अभियान जम्मू में समाप्त होगा। उन्होंने कहा है कि जीडीसी हीरानगर में एक पौधा भी लगाया गया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दूसरे चरण के वाटरशेड विकास घटक के तहत कई पहलों का उन्होंने उद्घाटन किया। पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी को उनके पिता के मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खान के रूप में नामित किया गया है। 53 वर्षीय प्रिंस रहीम दुनिया के इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम बनाए गए हैं। पिता और आध्यात्मिक धर्मगुरु करीम आगा खान चतुर्थ ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम को आगा खान पंचम के रूप में नामित किया था। उनका निधन पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हो गया और उनके परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलोमोन योंग से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने बहुपक्षीय सुधारों की आवश्यकता सहित संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा क्षेत्रीय, वैश्विक और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेडाइटिस भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। उनके दौरे से भारत और ग्रीस के बीच संबंध मजबूत होंगे और नीतिगत साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम का 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड से सामना होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने हाल ही में मेहमान टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 4-1 से शानदार जीत दर्ज की थी। विश्व टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष डबल्स जोड़ी मानव ठक्कर और मानुष शाह का सामना चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी फ्लोरिन बुरासार्ड और एस्टेबेन डॉर से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।